हम लोग भगवत गीता का दूसरा अध्याय उसका ओवरव्यू पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा, एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि किस तरह पहले अध्याय में अर्जुन ने जो है अपना धनुष को अलग रख दिया और अर्जुन ने बोला कि वो युद्ध नहीं करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन बहुत दयालु हृदय था और ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है, उसे ज्ञान मिलना चाहिए। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि अर्जुन ने धनुष बाण का त्याग कर दिया है तो धृतराष्ट्र खुश हो गया, लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि नहीं, कृष्ण जो है अभी अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और अर्जुन जो है युद्ध करेगा। हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार अर्जुन को डांटा, कुतस्तवा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुना। उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे अंदर ऐसे विचार कैसे आए जो कि आर्यों को शोभा नहीं देते हैं, जो कि स्वर्ग ले जाने वाले नहीं हैं, जो कि यश बढ़ाने वाले नहीं हैं, ऐसे विचार तुम्हारे हृदय में कैसे आ गए। और इस प्रकार से अर्जुन से जब उन्होंने बोला तो फिर अर्जुन जो है उनको रिप्लाई करता है, कहता है कि हे शत्रुहंता, मैं कैसे उन लोगों पे बाण चलाऊं जो कि मेरे पूजनीय व्यक्ति हैं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के जी लूं, वो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से मैं जंगल अभी होके आया हूं, फिर से जंगल चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इन लोगों को मार कैसे सकता हूं मैं। अभी अर्जुन, पांच कारण अर्जुन के हमने डिस्कस किए थे। पहला कारण था दया, अर्जुन को दया आ रही थी। दूसरा कारण था पाप या भोग, पाप अर्जुन सोच रहा था कि इन लोगों को मारने से मुझे पाप लगेगा। तीसरा कारण था भोग, अर्जुन सोच रहा था कि इन लोगों को अगर मैं मार दूंगा तो भोग कैसे करूंगा, क्योंकि भोग तो इनके साथ में ही करना है। चौथा कारण सामाजिक कारण, कि किस प्रकार से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और संतानें जो है वो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और जो भी समाज के जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। और पांचवा कारण अर्जुन का, वो छठे नंबर के श्लोक में आया है दूसरे अध्याय के, जिसमें अर्जुन बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, जीता जाना या वो हमें जीत लें या हम जो है उनको जीत लें, दोनों में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मुझे आप बताइए। इस तरीके से सातवें अध्याय सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान की शरण को ग्रहण करता है। कार्पण्य दोषो पहात स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया स्यान् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ, मैं भूल गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपके शरण को ग्रहण करता हूं, मैं आपका शिष्य बन गया हूं। तो अभी तक अर्जुन और कृष्ण में जो बातचीत हो रही थी वो एक गुरु और शिष्य की भांति नहीं हो रही थी, बल्कि एक मित्र की भांति हो रही थी। अभी अर्जुन अपने आप को शिष्य की भांति भगवान कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करता है और भगवान तुरंत जो है गुरु का पद ले लेते हैं। इस प्रकार से श्लोक संख्या 11 से भगवान जो है अर्जुन को बताना शुरू करते हैं आत्मा के बारे में। हमने कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो हम अपने शरीर के बारे में बताते हैं, हाँ, अपना नाम बताते हैं। और एक डॉक्टर, इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में लगभग 60 पाउंड में ये सारे सारे केमिकल्स हैं और हमारे शरीर का कुल मूल्य जो है वो 110 रुपए है। फिर हमने जाना कि हमारी असली पहचान क्या है, हमने एग्जाम्पल्स देखे। और ये देखा कि मृत्यु जो है वो एक जीव को इस शरीर को मार देती है और दूसरा शरीर उसको दे देती है। आत्मा के लिए कभी भी मृत्यु नहीं होती, ना तो जन्म होता है। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि हम क्या हैं? आत्मा है। और आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद है, हमेशा विद्यमान रहने वाली है। उसका कभी ना तो जन्म हुआ है, ना जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और जब शरीर मार दिया जाता है फिर भी वो मारा नहीं जाता। फिर हमने शरीर और आत्मा में अंतर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर शाश्वत अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है, शरीर हमेशा मृत है और आत्मा हमेशा जीवित है। क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है इसलिए हमारा शरीर भी जीवित प्रतीत होता है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, और आप जिनको मारने जा रहे हैं आप केवल शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं मार सकते। आप जो शरीर देखते हो दर्पण में आप वो नहीं हो, आप वास्तव में उसके चालक हो, उस शरीर को चलाने वाले हो। जैसे किसी कार में एक ड्राइवर होता है, आप भी वैसे ही इस शरीर को चलाने वाले ड्राइवर हो। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अनावश्यक सोच मत करो, असोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। और भगवान ने सारे जीवों के बारे में बताया कि सारे जीव जो हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि वो ना रहे हों, न तो मैं न सारे जीव। और इस प्रकार से भगवान ने बताया देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्ततन मुह्यति, कि जिस तरीके से व्यक्ति जन्म के बाद कुमार अवस्था में, कुमार से युवा अवस्था में और उसके बाद बुढ़ापे की अवस्था में जाता है, ठीक वैसे ही मृत्यु हो जाने पर वो दूसरे देह को प्राप्त कर लेता है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। फिर हमने जाना कि जो शरीर जीवित होते हैं उनमें छह तरीके के बदलाव होते हैं। वो जन्म लेता है, विकास होता है, पोषण होता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण हो जाता है और अंत में फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। हम सब ने अपने जीवन में ये पाया होगा कि हमारे भी कोई ना कोई संबंधी वो शरीर को त्याग चुके हैं। एक बार एक महिला भगवान बुद्ध के पास गई और उसने उसका पुत्र मर गया था, तो उस महिला ने भगवान बुद्ध से कहा कि आप कृपया मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, किसी एक ऐसे घर से कुछ अन्न लेके आ जाओ जहां पे कोई भी मरा ना हो। वो स्त्री पूरे राज्य में घूम के आई लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पे कोई भी मरा हुआ ना हो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किस कोई तो मरा ही होगा। तो इस प्रकार से उसको समझ में आ गया कि संसार जो है वो ऐसा बनाया ही गया है कि यहाँ पे जो शरीर मिलता है वो तो मरना ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता और जो शरीर है उसको कोई बचा नहीं सकता। भौतिकता में लोग सोचते हैं कि हम लोग जड़ पदार्थ से बने हुए शरीर हैं और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता में लोग सोचते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम भौतिक शरीर में बंधे हुए आत्मा हैं और जब भौतिक शरीर काम करना बंद कर देता है तब हम मरते नहीं हैं। जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो रात में सोना भी एक हिसाब से मरना ही हो गया, हम उतनी देर के लिए मर जाते हैं। तो ऐसे ही जब मृत्यु होती तो भी हमारा वो सोना थोड़ा ज्यादा हो जाता है और दूसरे शरीर को हम प्राप्त करते हैं बाद में। यहां पे जीवित और मृत शरीर में अंतर बताया गया कार के द्वारा। तो जिस तरीके से कार जो है बिना ड्राइवर के हिल नहीं सकती, शरीर भी बिना आत्मा के मृत कहलाता है। ये हमने पिंजरा वाला एग्जांपल देखा था। जब व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं कि वो गुजर गया। कौन गुजर गया? शरीर तो वहीं पे है, तो वास्तव में आत्मा वहां से गुजर गई है, आत्मा उस शरीर से निकल गई है। तो जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? जीवित शरीर में आत्मा है और मृत शरीर में आत्मा निकल गई है, ये अंतर है। हमने जाना कि यंत्र और आत्मा यानी चेतना, चेतना जो है वो यंत्रों में नहीं हो सकती, ये हमने जाना। और फिर हमने कुछ अनुभव देखे, मृत्यु के पास के अनुभव और शरीर के बाहर के अनुभव, वो भी हमने वहां पे देखा। हमने जाना कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही, कि जिस तरीके से मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो जब वो शरीर रहने लायक नहीं रह जाता आत्मा के, तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है और दूसरे शरीर में चली जाती है। ये कुछ बुक्स हैं जहां पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। हमने ये भी जाना कि फोबिया होता है कई लोगों को, जैसे किसी को पानी से फोबिया हो सकता है, किसी को गंध देख के फोबिया हो सकता है, किसी को खून देख के फोबिया हो सकता है, ये पिछले जन्म से आता है। और हमने ये भी जाना कि जुड़वा भले ही होते हैं लेकिन आत्मा जो है वो अलग अलग रहती है, असमानताएं उनके अंदर पाई जाती हैं। मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है, मृत्यु के समय आत्मा जो है स्थूल शरीर को पीछे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। आत्मा एक से दूसरी योनि में शरीर बदलता है। तो ये छोटा सा वीडियो है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वीडियो आप लोगों को विजिबल था। ओके। तो इस तरीके से आत्मा शरीरों को चेंज करती है और यह जरूरी नहीं कि एक मनुष्य की बॉडी छोड़ने के बाद मनुष्य का शरीर ही उसको दोबारा प्राप्त हो, वो कोई भी शरीर हो सकता है, किसी जानवर का, किसी कीड़े का, किसी मकोड़े का, कोई पानी में रहने वाले का, या फिर किसी पक्षी का, पेड़ का, ये कोई भी शरीर उसको प्राप्त हो सकता है। तो ये एक स्टोरी है, ये शुक्ला करके एक लड़की थी जो अपने पिछले जन्म को याद करती है। वो 5 साल से थोड़ी बड़ी थी। सेन गुप्ता उसके परिवार के 5 सदस्य ने शुक्ला के साथ भटपारा की तरफ प्रवास किया। जब भटपारा पहुंचे तो शुक्ला ने सबको बताया कि ये रास्ता है करके वो अपने पूर्व जन्म के ससुर के घर पहुंच गई। अपने पिछले जीवन काल में जो उसका घर था उसको उसने पहचाना, अपनी सास को पहचानी, जेठ पति और बेटी को पहचानी और अपने पति को उसने बताया कि ये मेरे पति हैं और जेठ का असली नाम भी बताया। इस तरीके से पिछले, ये केवल अभी 5 साल की बच्ची है और पिछले जन्म की बातों को वो बता रही है। तो इस तरीके से यहां पे इन 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में, 23 से 25 नंबर श्लोकों में आत्मा का विश्लेषण किया गया है। बताते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता, ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अछेदोयम अदहयोयम, ये ना तो टूटने वाला है, ना जलाया जा सकता है, ना अघुलनशील है, ना सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और एक जैसा रहने वाला है। ये अव्यक्त है, यानी कि इसके बारे में पूरा डिटेल पता नहीं है, अकल्पनीय है। कोई कहेगा कि क्या हम कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, तो आत्मा के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तस्मात देवम विदित्वेनम नाथुन सोचंती मरसी, जब इतना सारा चीजें बताई गई हैं आत्मा के बारे में, इसलिए तुम्हें अभी चिंतन नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, ये युद्ध करने के लिए तुमको तैयार रहना चाहिए। इस तरीके से भगवान अर्जुन को गाइड करते हैं। अभी यहां से हमारा आज का सेशन शुरू होता है, लेसन 3। तो लेसन 3 में हम लोग जानेंगे कि हमारे 2 धर्म होते हैं, देयर आर 2 ड्यूटीज, स्पिरिचुअल स्वधर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल स्वधर्म। तो एक है शारीरिक कर्तव्य और एक होता है सनातन, यानी कि स्वाभाविक कर्तव्य। ये 2 कर्तव्यों के बारे में हम जानेंगे। सनातन धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है जो त्यागा नहीं जा सकता। जैसे आग से उसकी गर्मी और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, जहां पे आग है वहां पे गर्मी भी होगी और प्रकाश भी होगा। जैसे पानी से तरलता को अलग नहीं किया, पानी बहता है उसको पानी से अलग नहीं कर सकते। अगर आप पानी, कोई ऐसा पानी हो जो बहता ना हो तो आप उसको पानी नहीं मान सकते। तो ऐसे ही ऐसी क्या चीज है जो कि जीवित प्राणियों से अलग नहीं की जा सकती है? ऐसी क्या चीज है जो जिसको अगर प्राणियों से निकाल लिया जाए तो प्राणी वास्तव में प्राणी नहीं रह जाएगा? ऐसी क्या चीज, उस चीज को ही धर्म बोला जाता है। जैसे आग का धर्म है गर्मी और प्रकाश, पानी का धर्म है तरलता, नमक का धर्म है नमक का खारापन। ऐसे ही मनुष्य का धर्म है किसी ना किसी की सेवा करना। मनुष्य का यह स्वधर्म है कि वो किसी ना किसी की सेवा करेगा, बिना सेवा किए वो नहीं रह सकता। आप यहाँ पे तीन फोटोज देख रहे हैं, एक में वो दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है, एक कोई व्यक्ति है वो कुत्ते को टहला रहा है, एक माँ है जो अपने बच्चे की सेवा करती। ये हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में लगा रहता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो मृत्यु जो है इस तरीके की सेवा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। हर जीव किसी न किसी से प्रेम करता है, कोई अपने दादाजी से प्रेम करता है, कोई अपने माँ से प्रेम करता है, कोई अपने पिता से, पत्नी से, बच्चों से, फ्रेंड से, लेकिन ये जो प्रेम है ये कैसा है? अस्थाई है। अस्थाई का अर्थ होता है क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। जब तक हमारा जीवन चल रहा है इससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। मान लीजिए कोई बच्चा हो जिसको अपने दादाजी से बहुत प्रेम हो, अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्रेम हो, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? जब तक उसके ग्रैंडफादर जीवित हैं तब तक, उसके बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है। तो यहां जो संबंध है भौतिक संसार में और जो प्रेम है वो अस्थाई है, वो टेम्परेरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की को या कोई भी व्यक्ति जब एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो झूठ है। वो झूठ है क्योंकि वो क्या है? अस्थाई है, कुछ दिनों के लिए है। अभी बोलते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और मे बी इन कुछ ही दिनों में बोलने लगे हाँ आई कैन नॉट लिव विद यू। पहले बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और हो सकता है दो दिन बाद बोलने लगे कि तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तो यहां का संबंध क्षणिक है, अस्थाई है, लेकिन आध्यात्मिक संसार ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो वो क्षणिक नहीं है, वो परमानेंट है, वो पूर्ण है। आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। आत्मा का धर्म है कि वो भगवान से प्रेम करे और भगवान की सेवा करे। जब इस दुनिया में देखा जाता है कि जब किसी कोई वेतन बंद हो जाता है, कोई सैलरी मिलनी बंद हो जाती है, तो कंपनी की सेवा भी रोक दी जाती है। मान लीजिए बोला जाए आपसे कि अभी आप कोई आप कंपनी में जॉब करते हैं और बोला जाए कल से आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो कहेंगे भाई अब मैं कंपनी क्यों आऊं। हाँ, लेकिन हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु जो है हमारे संबंध को रोक देती है। मृत्यु हमको, या तो हमारे संबंधी को जिसे हम प्रेम करना चाहते हैं, मृत्यु हमसे छीन लेती है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है? वो शाश्वत है और हम भी शाश्वत हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत हैं। तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो प्रेम पूर्ण जो संबंध है वो भी शाश्वत है। इसलिए भगवान के प्रति जो शाश्वत प्रेम है और जो सेवा है उसी को सनातन धर्म बोला जाता है। आप लोगों ने यह वर्ड सुना होगा, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। ये सनातन धर्म क्या है? जीव भगवान की सेवा करे प्रेम पूर्वक, यही सनातन धर्म है। तो हम यहां पर देख रहे हैं पहले पिक्चर में किस तरीके से भगवान के मित्र सखा जो भी हैं वो सारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को अपने अपने घर से लाया हुआ पकवान खिला रहे हैं, जबकि जंगल में वो गायों को चराने के लिए जाया करते थे, बछड़ों को चराने के लिए जाया करते थे। और दूसरा पहला पिक्चर है जहां पे भगवान कृष्ण द्वारका में हैं और सारे लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और तीसरे पिक्चर में भगवान राम और सीता, उनकी सेवा में हनुमान जी लगे हुए हैं। और चौथे पिक्चर में यशोदा मैया जो है वो कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। तो जब हम भगवान के प्रति अपने संबंध को डेवलप करते हैं, भगवान से अपना संबंध बनाते हैं, तो हम वास्तव में वास्तविक सेवा भगवान की कर पाते हैं। और वही वास्तविक प्रेम है, वही वास्तविक सेवा है, और यही वास्तविक धर्म है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ है, हम लोग भगवान से जो हमें प्रेम होना चाहिए हम उसको भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं? जैसे कोई भूलने वाला, भूलने की बीमारी है किसी को, तो जैसे वो अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, ऐसे ही हम भी भगवान के प्रति अपने प्रेम और सेवा को भूल चुके हैं। वास्तव में हम भगवान से हमेशा प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो भगवान से प्रेम करेगी, परमात्मा से प्रेम करे। लेकिन अभी क्या हुआ है, हमें भूलने की बीमारी हो गई है और हम भूल गए। इस दुनिया के अस्थाई और झूठे रिश्ते जो हैं, जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, तो यहां जो भी हम रिश्ते और नाते बनाते हैं वो क्या होता है, उनको समय जो है खत्म कर देता है। चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं कितने तरीके के रिश्ते होते हैं। पहला, पति या पत्नी केंद्रित, जिसमें सेंटर में पति रहता है या पत्नी रहती है। दूसरा कभी कभी परिवार केंद्रित होता है, जिसमें परिवार की खुशियां जो हैं वो सारी खुशियां व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। या फिर धन केंद्रित, धन आना चाहिए परिवार में जो भी हो, धन आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और काम केंद्रित, किसी को अपना कार्य बहुत पसंद होता है, हाँ बस वो उस तरीके के कार्य को करना चाहता है, भले ही उसको पैसा मिल रहा हो ज्यादा अच्छा या ना मिल रहा हो, लेकिन अपने कार्य से बहुत अटैच होता है। या फिर संपत्ति केंद्रित, हाँ जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भोग विलास केंद्रित, जहां पे इंद्रिय तृप्ति मिलती हो ऐसा। और या फिर मित्र और शत्रु केंद्रित, हाँ ये इतने तरीके के रिश्ते हैं जो कि समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। स्वान केंद्रित, कुछ लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, स्वान मतलब कुत्ता। आध्यात्मिक आनंद भगवान के प्रति सेवा अपने आध्यात्मिक स्वधर्म और निर्धारित कर्म करने से प्राप्त होता है। तो अभी जो भी हम आनंद, जो भी हम लोग सुख को प्राप्त करते हैं वो भौतिक सुख है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो वो सनातन धर्म के कारण, अपने निर्धारित कर्म करने के कारण उसको एक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद जो है ना, उसकी तुलना इस भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। जब कोई व्यक्ति उस ब्लिस को प्राप्त करता है, उस आनंद को प्राप्त करता है, तो यहां के जो भी उसको सुख हैं वो सारे उसके लिए बेकार लगने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा दाल चावल खाता हो और उसके सामने 56 भोग से भरी हुई प्लेट रख दी जाए, तो जब 56 भोग से भरी हुई प्लेट रख दी जाएगी तो दाल चावल को जिस तरीके से वो भूल जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की सेवा करने में जो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद के आगे इस संसार में होने वाले सारे कष्टों को व्यक्ति जो है भूल जाता है, सारे कष्टों को भी और सारे सुखों को भी जो उसने कभी अनुभव किए हैं। भौतिक स्वधर्म का पालन करने से भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब कोई व्यक्ति अपने नियमों का पालन, जैसे माँ अपने बच्चे का केयर करती है, पति अपने परिवार का केयर करता है, पत्नी की केयर करता है, तो भौतिक आनंद प्राप्त होता है। अभी यहां पे देखिए, युद्ध लड़ने के लाभ जो है भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले यह बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और इस प्रकार उन्होंने 31 नंबर श्लोक से आगे बताना शुरू किया। खास करके 31-32 दो नंबर दो श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया कि युद्ध लड़ने से क्या फायदा होगा। जब तुम युद्ध लड़ोगे तो क्या फायदा होगा, भगवान बताते हैं कि जब 2.31 क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और कार्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करना तुम्हारा ड्यूटी है, वो तुम्हें करना ही चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, वो क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने बोला था एक कि उसके आनंद की हानि हो जाएगी, उसको भोग नहीं मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट में भगवान यहां पे ये श्लोक बोलते हैं। अर्जुन को भगवान बताते हैं कि तुम जो युद्ध करोगे उससे सभी प्रकार से वास्तविक आनंद मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा उससे, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी को कर रहे हो। किसी कार्य को, अपने ड्यूटी को, अपने धर्म को ना करना वो बहुत बड़ा पाप है। अपनी ड्यूटी को निभाना, अपने कर्म को करना, वो वास्तव में बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तो कृपया वो करो। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने धर्म को, तुम्हारी जो ड्यूटी है उसको नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन बोल रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। भगवान कहते हैं नहीं, क्षत्रिय होने के नाते अगर तुम अपने अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा और तुम अपना यश भी खो दोगे। पहले लोग बोलते हैं कि अर्जुन इतना बलशाली है, अर्जुन जो है महाभारत के युद्ध को अकेला समाप्त कर सकता है, लेकिन बाद में तुम अपने यश को खो दोगे। बोलेंगे कौन अर्जुन, वही जो भाग गया युद्ध से। और अगर आप इस युद्ध को जीत गए, श्लोक संख्या 37 में बताते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर आप जीते तो आपको पृथ्वी पर एक बेजोड़ साम्राज्य मिलेगा राज्य करने के लिए, और अगर आप हारे तो कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे। जित्वा वा भुक्षसे महिम हतो वा प्राप्सिसु स्वर्गम, हतो अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तस्मा दुतिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृत निश्चया, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध का निश्चय करो, युद्ध करो। तो इसलिए भगवान ने 35 नंबर श्लोक से लेकर 37 नंबर श्लोक तक अर्जुन को बताया कि युद्ध ना करने से उसको क्या क्या नुकसान होगा। भगवान ने बोला कि लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा बढ़कर है। जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है, तुमको यश दिया है, तुम्हारा नाम का वो गान किया है, वो सोचेंगे अरे अर्जुन ने डर के मारे युद्ध छोड़ दिया, और वो तुमको तुच्छ मानेंगे। वो अनेक कटु शब्द बोलेंगे तुमको, और तुम्हारी सामर्थ्य जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसका उपहास करेंगे, कहेंगे बनता तो बहुत बड़ा हीरो था लेकिन एंड टाइम पे भाग गया। वो ये थोड़ी देखेंगे कि तुम जो है दया तुमको आ रही है इसलिए तुमने युद्ध छोड़ा है, तुम ये सामाजिक कारणों को देखकर युद्ध छोड़ रहे हो। वो तो यही कहेंगे ना कि वो डर गया। और ऐसे ये सब जो होगा इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कर्तव्य से बचने का नुकसान बताते हैं। अर्जुन ने बोला था कि मुझे पाप लगेगा, भगवान ने उसका खंडन किया। पाप निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार युद्ध नहीं लड़ना ही वास्तविक पाप है, है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब उसको वास्तविक पाप लगता है। तो उसको इतनी प्रसिद्धि मिली है, द्रोणाचार्य को उसको आशीर्वाद है कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धारी संसार में नहीं होगा, और भगवान शिव से उसका युद्ध हुआ था और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको 500 पदास्त्र दिया था, वो सारी जो प्रसिद्धि है वो सब बदनाम हो जाएगी। भगवान इंद्र ने अपने आसन पे अर्जुन को बैठाया था, वो सब जो है अपमान के कारण वो बेकार हो जाएगा, और एक सम्मानीय व्यक्ति जो होता है उसके लिए अपमानित होना जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है, खराब है। लोग आपके जो आपका आपके दुश्मन है वो आपके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि अर्जुन जो है युद्ध छोड़ के भाग गया। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया। अब यहां पे हम देखते हैं सकाम कर्म के बारे में। सकाम कर्म का अर्थ होता है जिस कर्म को करने से कुछ फल की प्राप्ति होती है, ऐसे कर्म जो कि फल को ध्यान में रख के किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति युद्ध करता है तो फल को ध्यान में रखता है मैं जीतूंगा, तो ऐसे कर्म को सकर्म कहते हैं या सकाम कर्म कहते हैं। भगवान 31 श्लोक में बोलते हैं स्वधर्ममपि चावेक्षन अविकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाच्छेवम नत क्षत्रियस्य न विद्यते। बोलते हैं कि तुम्हें धर्म का विचार करते हुए जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य कारण नहीं है, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। 32 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। सकाम कर्म एक लक्ष्य होता है, मुझे यह प्राप्त करना है। तो बोलते हैं तुम्हारा ध्येय क्या है, यद्रच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। 33 नंबर श्लोक में बोलते हैं अगर तुम इसका पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, बदनामी होगी और आलोचना होगी। इसलिए अपने निर्धारित कर्तव्य, जो कि तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, उससे सुख को प्राप्त करो। तो अभी इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण बताए थे, और भगवान ने उन 5 कारणों को जो है वो उनका उत्तर दिया है, उनको खत्म किया है। क्या है? पहला है दया। अर्जुन ने दिखाया था कि मैं दया कर रहा हूं, कैसे इन लोगों को मैं मारूं। तो भगवान कहते हैं कि भाई दया किसके लिए कर रहे हो, ये जो शरीर है ये तो मरने ही वाला है, आज नहीं तो कल भीष्म पितामह, हो सकता है 10-15 दिन और जी जाए, लेकिन बाद में तो मरना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि शरीर तो मरेगा ही और आत्मा कभी भी मरती नहीं है, तो तुम दया वास्तव में किसके प्रति दिखा रहे हो। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस क्वेश्चन का जो वो अर्जुन का जो तर्क था उसका खंडन किया। दूसरा तर्क था अर्जुन का कि भोग नहीं कर सकते हम, भले ही विजयी हो जाए लेकिन भोग नहीं कर सकते। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि अगर विजयी होगे तो राज्य मिलेगा, और अगर हार जाओगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए ये भी खंडन कर दिया भगवान ने। तीसरे में अर्जुन ने बोला था कि मुझे पाप लगेगा, मैं पाप कर्म का फल मिलेगा मुझे, और भगवान अर्जुन को उल्टा साबित कर देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे
तो पाप लगेगा, युद्ध करने से तुमको पाप लगने वाला नहीं है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है, यह कोई अपनी कोई नॉर्मल युद्ध नहीं चल रहा है, धर्म के लिए युद्ध चल रहा है, इसलिए इसमें तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो वही तुम्हारे लिए पाप है। अर्जुन ने भगवान से बोला था कि उसकी पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा। अभी 45 और 46 नंबर श्लोक में भगवान जो है वो बोलेंगे कि वैदिक कर्म कांडों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। और अंतिम असमंजस, अर्जुन जो मोह में पड़ गया था, भगवान उसका आंसर देते हैं कि गुरु के प्रति शरणागत हो जाओ असमंजस की स्थिति में और अपना कर्तव्य पालन करो। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के पांच के पांचों जो तर्क थे उनका खंडन करते हैं। अब सकाम कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति किस तरीके से होती है, इस श्लोक में 37 नंबर श्लोक में बताया गया है कि अगर आप जीते तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और अगर हार भी गए तो क्या होगा, सॉरी, जीते तो राज्य को प्राप्त करोगे और हार गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवत गीता अभी जियो 2.38 से लेके 53 तक का जो है उसमें इस सकाम कर्म से आगे की बात की गई है। सकाम कर्म में हमने देखा था कि व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, वो अपने लिए कुछ पाना चाहता है, लेकिन अभी जो सकाम कर्म नहीं, अभी बात होगी बुद्धि योग की, या जिसको निष्काम कर्म योग बोला जाता है। निष्काम कर्म योग क्या है? सकाम कर्म योग में जिस प्रकार से लक्ष्य रहता था अपनी इंद्रिय तृप्ति, लेकिन निष्काम कर्म योग में लक्ष्य है अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना वो जरूरी है। तो बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग में जो प्रतिक्रिया है उससे व्यक्ति आसक्त नहीं रहता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये जो सकाम कर्म था, सकाम कर्म में जैसे कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, मुझे आम बाद में प्राप्त होंगे, ये है सकाम कर्म। लेकिन कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है वो अपने लिए नहीं लगाता, वो सोचता है चलो हाँ बाद में कुछ होगा, आम आए या ना आए मेरे को पेड़ लगाना है, तो ये जो है उसको बोला जाता है निष्काम कर्म योग, जिसमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे आसक्त हुए बिना कोई कर्म करता है। जैसे सैनिक जो है वो जब सेना में आते हैं और वो युद्ध करने के लिए आते हैं तो हारें या जीतें उससे उनको मतलब नहीं है, लक्ष्य क्या प्राप्त होगा उससे उनको मतलब नहीं, उनकी ड्यूटी है युद्ध करना, तो उस ड्यूटी के लिए वो कार्य करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम सकाम कर्म तो छोड़ो, उसके ऊपर आओ। 38 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन से बोलते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। तुम सुख और दुख छोड़ो, हानि लाभ छोड़ो, विजय पराजय का विचार छोड़ो, युद्ध के लिए युद्ध करो, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू फाइट, इसलिए युद्ध करो। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुमको कोई भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। मैं यहां पे आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये समझ में आया ये बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग क्या होता है? अगर नहीं आया तो आगे के श्लोक भी समझ में नहीं आएंगे, आगे का ओवरव्यू भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आगे किसी को कोई डाउट हो तो कृपया अभी यहां पे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी को पूछना है बुद्धि योग निष्काम कर्म योग अगर समझ में नहीं आया तो? रिजल्ट से आसक्ति नहीं होनी चाहिए,
लेकिन जैसे हम लोग अभी जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिल रही है।
हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, तो वही भगवान यहां पे बता रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है? अपने को म्यूट कीजिए जी। सुख मिलता है या दुख मिलता है, लाभ होता है या हानि होती है, जय मिलती है या पराजय मिलती है, वो छोड़ो, अपना कर्तव्य का पालन करो, वो जरूरी है, वही बुद्धि योग या निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। अभी सकाम कर्मयोग में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, अब मेरे को फायदा होना चाहिए, लेकिन निष्काम कर्मयोग उससे बढ़कर है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जब हम लोग कहीं पे कुछ दान देते हैं, है ना, कोई मंदिर में दान करते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं, तो हमें जो अनुभूति होती है वो अनुभूति जो है वो निष्काम, क्योंकि उससे हमें कुछ रिजल्ट से लेना देना नहीं रहता। हाँ, मंदिर में हमने कुछ दान कर दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है कि क्या होगा, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने दान किया, तो वो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फायदे को सोचने से। सकाम कर्म में व्यक्ति अपना फायदा सोचता है कि मैं ये करूंगा मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मैं युद्ध करूंगा मुझे जीत मिलनी चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म में वो युद्ध को ज्यादा मैटर करता है। अभी भगवान इस श्लोक में बोलते हैं युद्ध के लिए युद्ध करो, ततो युद्धाय युद्धस्व, तुम किस लिए लड़ो, युद्ध करने के लिए लड़ो। बस वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे लिए युद्ध करो। भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करें, भगवान से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उनसे मिले, कुछ रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं। भगवान चाहते हैं हम निष्काम भाव से उनसे प्रेम करें, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, उसको ड्यूटी मानो और युद्ध करो। तो ये जो है सकाम कर्म से उच्च प्रोसेस है, ठीक है। अभी भगवान बोल रहे हैं ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धिर योगे तुमाम श्रृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहससी। बोलते हैं अभी तक मैंने सांख्य का वर्णन किया, सांख्य मतलब आत्मा के बारे में बताया, अब मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूं कि किस भाव से निष्काम तरीके से काम किया जा सकता है, कर्मों को किया जा सकता है, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो आपके प्रश्न का आंसर भगवान खुद देने वाले हैं अगले श्लोकों में। तो भगवान बोलते हैं कि सुनो हे अर्जुन, अगर तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, कौन सा ज्ञान के साथ, निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाता है, अगर तुम उस भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा, कर्म के बंधन की जो जंजीरें हैं उनको तुम तोड़ दोगे। भगवान इस योग की विशेषता बताते हैं, ये जो बुद्धि योग है, निष्काम कर्म योग है, इसका फायदा क्या है। बोलते हैं इस योग में कोई नुकसान नहीं है। नेहाभिक्रम न सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस स्लाइड में, ये गजेंद्र नाम के एक हाथी और ये मगर ग्राह नाम का एक मगर था। तो जो गजेंद्र था ये पिछले जन्म में एक राजा था और इसने भगवान की भक्ति की हुई थी। भगवान की भक्ति करने के कारण जब अगले जन्म में भले उसको कुछ कारणवश हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन उस भक्ति का प्रभाव बना रहा और उसने भगवान की आराधना, हाँ, भगवान को फ्लावर, वो कमल का फूल अर्पित करके किया और भगवान उससे प्रसन्न हो गया। हम लोग भौतिक संसार में देखते हैं, कभी कोई पढ़ाई करता है, कोई 10th पास कर लेता है और मान लीजिए वो मर गया, तो अगले जन्म में क्या होगा, उसको फिर से प्री नर्सरी में जाना पड़ेगा, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति यानी कि जो बुद्धि योग है, निष्काम कर्म योग है, जिसमें व्यक्ति रिजल्ट के प्रति अनासक्त रहता है, क्या फल मिलेगा उससे उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो भाव से अगर कोई करता है तो वो क्या होता है, उसका वो खत्म नहीं होता। यानी अगर 10th पास कर लिया है तो अगले जन्म में वो 11th से शुरू करेगा। न एह विक्रम नासो अस्ति, थोड़ा भी कमी नहीं होती है। प्रत्यवायो न विद्यते, हाँ, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी अगर कोई इस पे प्रगति करता है, थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है, त्रायते महतो भयात, वो बड़े से बड़े संकट से रक्षा कर सकता है, उसकी रक्षा हो जाएगी बड़े से बड़े संकट से, और इस प्रयास में कोई भी हानि नहीं है। लेकिन सकाम कर्मयोग में क्या होता है, जैसे सकाम कर्मयोग में एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करना शुरू करता है, कहता नहीं मैं 16 सोमवार रखूंगा, तो 16 सोमवार तक वो प्रयास करता है। मान लीजिए बीच में किसी सोमवार को उससे गड़बड़ हो गई, उसने व्रत नहीं रख पाया, तो क्या होगा, फिर से 16 सोमवार करने पड़ेंगे, फिर से गड़बड़ होगी, फिर से 16। लेकिन भगवान की भक्ति और ये बुद्धि योग निष्काम कर्मयोग में ऐसा नहीं है, आपने जहां से छोड़ा आप वहीं से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, इसमें कोई हानि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, महान भय जो मृत्यु है, मृत्यु से भी ये भक्ति जो है, बुद्धि योग जो है, वो रक्षा कर सकती है। आगे चलते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हाकुर नंदना बहुशाखाहिनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। बोलते हैं जो इस बुद्धि योग पे चलता है उनका प्रयोजन दृढ़ होता है, वो सटीक अपने रास्ते पे चलता रहता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जो इस रास्ते पे नहीं चलता है, हे अर्जुन, उनकी बुद्धि जो है बहुत शाखाओं में विचलित रहती है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वहां जाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना करके वो पूरा विचलित रहता है। लेकिन जो इस तरीके से बुद्धि वाला होता है, बुद्धि योग को जो ग्रहण करता है, उसको क्या करता है, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहता है, उसका लक्ष्य भी जो है वो फिक्स रहता है। अब ये फोटो आप देख रहे हैं, इसका लक्ष्य फिक्स उसने किया हुआ है, उसको और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भले उसके पास पैर नहीं है, नकली पैरों की सहायता से वो जो है वो गेम में दौड़ रहा है। अब अर्जुन को भगवान बताते हैं, वेद जो है, वेदों में ज्यादातर सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। ये करो ये मिलेगा, ये करो तो स्वर्ग जाओगे, ये करो तो तुमको अच्छा पुत्र प्राप्त होगा, ये करो तो अच्छा पति मिलेगा, ये करो तो ये होगा, नौकरी लग जाएगी, ये करो तो। लेकिन भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपिश्चितः वेदवादरतः पार्था नाने दस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपणा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिमृति। बोलते हैं कि जो कम ज्ञान वाले लोग होते हैं, अल्प ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेदों के प्रति आसक्त रहते हैं। यानी कि वो वेदों में जो सकाम कर्म के बारे में बताया गया उनके प्रति आसक्त रहते हैं। वो सोचते हैं, चलो ये यज्ञ कर लो तो ये मिल जाएगा, ये तपस्या कर लो तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ये वाला व्रत रख लो, इस व्रत को रखने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से वो उसमें पुष्पित वचन बोला जाता है, पुष्पित वचन फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं ना, फ्लावरी लैंग्वेज, हाँ, उनको अच्छा लगता है, ऐसी लैंग्वेज वेदों में लिखी हुई है, तो लोग उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और वो क्या चाहते हैं, भोग और ऐश्वर्य की आकांक्षा करते हैं कि मुझे भोग मिले। तो यहां पे देखिए संबंध दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भोग और त्याग से आसक्त होता है, ध्यान से सुनिएगा, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति भोग और त्याग से आसक्त होता है तो वह एक केंद्रित बुद्धि नहीं रख पाता। अब इसका एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए कोई दारू पीता है, तो भोग है, कभी कभी कहता नहीं आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, हाँ वो त्याग, थोड़ी देर बाद सोचता नहीं चलो आज पी लेता हूं, फिर पीने की प्रयास करता है, फिर बोलता नहीं अभी कल से नहीं पीऊंगा। तो ये क्या है, उसकी बुद्धि केंद्रित नहीं हो सकती, सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती, वो ध्यान वो केंद्रित नहीं कर सकता बुद्धि को, और उसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, भगवान 44 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहित चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। बोलते जो लोग इस तरीके से आसक्त रहते हैं, उन वो क्या होता है, वो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके मनो में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय कभी भी नहीं हो पाता, समाधान ना विधीयते, उनका भला कभी भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को 47 नंबर के श्लोक में, हाँ, अभी 45 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, ये जो वेद हैं इसमें त्रिगुण के बारे में बताया गया है, तीन गुणों का वर्णन किया गया है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इनसे ऊपर बढ़ो और क्या करो, सारे द्वैत जो लाभ हानि जीत हार, हाँ, सुख दुख ये सब है, इसको छोड़ो और आत्मपरायण बनो, आत्मपरायण होकर युद्ध करो, अपनी ड्यूटी करो। इस तरीके से भगवान बताते हैं। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसको आप लोग कई लोग याद भी किए होंगे, 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं तीन चीजें यहां पे बोलते हैं। सबसे पहले, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, मा फलेषु कदाचन, मा मतलब संस्कृत में होता है नहीं, लेकिन तुम्हें फल का अधिकारी नहीं हो, तुम कर्म करो लेकिन फल के अधिकारी तुम नहीं हो। दूसरा, मां कर्म फल हे तुर्भू, अपने आप को कभी भी ये मत समझो कि मैं कारण हूं, मेरे कारण ये कार्य हो रहा है। और तीसरा, और इस तरीके से कभी ये भी मत सोचो कि मैं अभी करूंगा नहीं, मैं ये कार्य करूंगा नहीं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्म करो, कर्म के फल के प्रति अधिकारी नहीं हो तुम, इसलिए आसक्त मत हो। तो जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय से बोला है तुम आके नौकरी करो लेकिन फल नहीं मिलेगा तुमको, हाँ तुमको सैलरी नहीं मिलेगी, तो कोई करेगा? तो अर्जुन ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर्म करता हूं तो मुझे फल के, लेकिन कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि मैंने कर्म किया भगवान कहते हैं नहीं, ये भी मत बोलो कि तुमने कर्म किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और से भी मैं काम करा सकता हूं, ऐसा जरूरी थोड़ी तुम ही कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है उस काम को। अर्जुन ने कहा ठीक है तो मैं कर्म को करूंगा नहीं। भगवान ने कहा नहीं, कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इसलिए कर्म करो। चलिए हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी किस तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अनासक्त रहते हुए जो है वो आगे जाते हैं। चलिए यहां पे हम थोड़ा सा फिर से एक बार डिटेल में इस श्लोक को समझ लेते हैं। हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, दुनिया में केवल भौतिक परिणामों के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के लिए भी काम किया जाता है। जैसे योगी लोग तपस्या करते हैं, योग करते हैं, वो क्यों करते हैं? आध्यात्मिक परिणाम के लिए। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास कोई करता है तो धीरे धीरे वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है और शुद्ध करके वो आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है, वहां से वो आध्यात्मिक परिणामों के लिए केयर करता है। कर्म का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना है, ना कि केवल कर्म के फलों की प्राप्ति। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान, ना कि हमें बस काम करते रहे रिजल्ट मिलता रहे, काम करते रहे रिजल्ट मिलता रहे, नहीं, ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में किसी कंपनी में नौकरी भी करता है तो किसी कार्य को करते 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 क्या होता है, वो उसमें बहुत परफेक्ट हो जाता है, तो इस वो उसको ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, ना कि केवल उसको सैलरी मिल रही है, नहीं, वो ज्ञान में भी वृद्धि करता है और इस तरीके से उसका प्रमोशन होता है। भगवान बोलते हैं मां फले सुखद आचन, हम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं है। तो क्या इसका यह मतलब है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा? नहीं, कर्म का फल मिलेगा, वो भगवान देंगे। हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, परिणाम जब भी आए भगवान जब देना चाहेंगे तब देंगे। हमें क्या करना है? हमें उससे अनासक्त रहना है। तो एक अनासक्ति का प्रथम स्तर है कि कर्म के फल से आसक्त नहीं हूं मैं, मुझे क्या फल मिलेगा उससे मैं आसक्त नहीं हूं। लेकिन अनासक्ति का दूसरा स्तर यह है कि हमें अपने कर्म के फलों का कारण भी नहीं समझना चाहिए, अपने आप मैंने किया करके यह भी नहीं सोचना चाहिए। यानी स्वयं को कर्म के फलों का एकमात्र कारण नहीं समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में जॉब करता है तो वो सैलरी लेके आता है तो सोचता है इस सैलरी का मैं उपभोक्ता हूं, ये मेरे कारण आई है। नहीं, इसके अन्य और भी कारण हैं। तो जब हम ये जानेंगे कि अरे देखो भगवान की कृपा से मुझे जॉब लगी है, हाँ जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी वहां भी मेरे ऊपर कई सारे लोगों की मेहरबानी है, इस तरीके से जब हम समझेंगे तो हम अनासक्त रह सकते हैं, उससे आसक्त नहीं होंगे। और माते संगोस्तु कर्मणि, कर्म ना करने के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें निष्क्रियता नहीं करनी चाहिए। जब मैं कर्म कर रहा हूं मुझे फल भी नहीं मिलेगा, और जब मैं कर्म कर रहा हूं मेरे को मैं अपने आप को कारण भी ना समझूं तो हटाओ मैं कर्म ही नहीं करूंगा। नहीं, कर्म करने से ही हम शुद्ध होंगे और शुद्ध होते होते हम भगवान कृष्ण से जुड़ सकते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमको वो प्योर बना देती है, हमको वो लिबरेट कर देती है, मुक्ति प्रदान कर देती है वो सेवा। इसलिए भगवान 48 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि क्या है योग, क्या है निष्काम कर्मयोग का अभ्यास कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं योगस्थु कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, रिजल्ट क्या मिलेगा नहीं, कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कल हमने आपको दो तीन एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से एक लड़की 94% मार्क्स लेके आई, सेकेंड टॉपर थी क्लास की, लेकिन फिर भी उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली क्योंकि वो रिजल्ट से आ सकती थी। हाँ, मुझे नहीं 95 से भी ज्यादा लाने चाहिए थे। हाँ, तो इस तरीके से जो करते हैं उनको दुख मिलता है, लेकिन जो इस योग के द्वारा निष्काम कर्मयोग में जो करता है वो क्या करता है, वो समभाव से अपना कर्म करता है, रिजल्ट के प्रति वो अनासक्त रहता है। मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने क्या होगा, छोड़ो, अपना कर्म करते रहो, अपनी ड्यूटी को निभाते रहो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान में मन को एकाग्र करना, ये है वास्तविक योग। योग मतलब क्या होता है, रामदेव बाबा जी सिखाते हैं, वो योग नहीं है। योग मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान में अपने मन को एकाग्र करना, दैट इज कॉल्ड योगा। हनुमान जी, हनुमान जी आप सभी को पता है कि किस तरीके से जब सीता माता का पता लगाना था तो हनुमान जी की टीम अंगद के नेतृत्व में, अंगद और जामवान के नेतृत्व में वो पहुंची दक्षिण तट पे, और वहां से 100 मील समुन्द्र था, 100 योजन कहते हैं, इतना लंबा समुन्द्र था और उसको हनुमान जी ने पार किया। तो हनुमान जी किस तरीके से इस बुद्धि योग के द्वारा वो व्यवहार करते हैं, किसके किसके साथ? अपने प्रभु के साथ, भगवान राम के साथ उनका व्यवहार कैसा है? भगवान राम के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं। हाँ, भगवान उनको कुछ गिफ्ट देंगे, जब उन्होंने कुछ कुछ सेवा करके दिया तो भगवान उनको कुछ प्रॉफिट देंगे कि नहीं देंगे, कुछ सैलरी देंगे कि, वो उनका नहीं है, वो सेवा करना चाहते हैं भगवान की। प्रेम के निवास स्थान जैसे जो दिव्य माता है उनके साथ, माता सीता के साथ उनका व्यवहार कैसा है हम देखने को पाते हैं। साथ साथ में जो उनके उच्च वरिष्ठ हैं जैसे सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, इन सबको प्रार्थना करते हैं और प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो जो है सीता माता की खबर लेने के लिए निकलते हैं। जामवान उनसे बड़े हैं, जामवान के प्रति उनका इतना प्रेम भाव है, आदर भाव है, वो दिखाते हैं। साथ साथ में अंगद, अंगद जो उस दल का नेता है, अंगद के साथ उनका व्यवहार कैसा है। ये सारे व्यवहार हमें हनुमान जी से सीखने चाहिए। आप रामायण पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि हनुमान जी कितने परफेक्ट है अपने व्यवहारों को करने में। उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा ही व्यवहार हमारे सबके साथ होना चाहिए, भगवान के साथ, माता के साथ, अपने साथ वालों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ, अपने से छोटे लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ। जैसे मैनाक पर्वत रास्ते में मिला और मैनाक पर्वत ने कहा कि आप कृपया मेरे पे विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूं, मुझे माता सीता का पता लगाना है, सब लोग बहुत परेशान है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो मैनाक को वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, और आगे आगे भी स्वयं प्रभा के साथ व्यवहार, अपने मित्रों के साथ, उनका गर्व नहीं है उनकी जो सूरता है, इतने महान है, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरी पहचान क्या है, मैं राम जी का दूत हूं, मैं राम जी का दास हूं, ये उनकी पहचान है। अभी हम लोगों में अगर कोई थोड़ा भी कुछ भी आ जाता है तो तुरंत हम लोग अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगते हैं, लेकिन ये हनुमान जी की विशेषता देखिए, वो जो उनके हृदय में या उनके अंदर जो भी गुण है वो भगवान की कृपा मानते हैं। मेरे अंदर जो भी गुण है वो भगवान की कृपा के कारण है, और वो निपुण है भक्ति करने में, मुझे कब क्या करना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो हनुमान जी बिल्कुल निपुण है, इसीलिए वो राम जी को बहुत प्रिय है। जब उनको तनाव आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ऐसे मानसिक अनर्थ आ रहे हैं, तो वो कैसे निपट रहे हैं, कैसे जब मेघनाद ने उनको कब्जे में कर लिया, ब्रह्मास्त्र चलाकर उनको बांध लिया, फिर भी उन्होंने क्या किया, वो बंध के गए रावण के सामने, और रावण ने उनको उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए बोल दिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, और उसको भी उन्होंने पॉजिटिव वे में किस तरीके से लिया, उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। भगवान के शत्रु जो है उनको अपना शत्रु मान के उनसे कैसे निपटना, ये हनुमान जी हमको दिखाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करो, अर्जुन को बोलते हैं। ओके, तो 2.49 2.49 में भगवान कहते हैं, दूरेण ही आवरण कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण मन विक्ष कृपणा फल हेतवः, कि तुम सारे गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से मेरी शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति सकाम कर्म के द्वारा अब फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है, कंजूस लोग हैं। हमने ब्राह्मण और कृपण कल समझा था, तो उनको कृपण भगवान बोलते हैं। और भगवान आगे बोलते हैं 50 नंबर श्लोक में, कहते हैं भक्ति में संलग्न जो मनुष्य है वो इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति यहाँ उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, क्योंकि सारा कार्य कौशल क्या है, बुद्धि योग, बुद्धि योग में कार्य करो, यही सबसे बड़ा कौशल है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम्यम्। इस तरीके से भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तगणों ने अपने आप को इस संसार से मुक्त कर लिया है, कर्म के फलों से मुक्त हो गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए हैं, ये और भगवान के पास चले गए हैं, जो जहां पे पहुंचना मतलब सारे दुखों से पीछा छुटाना है। पदम गच्छन्ति नाम्यम्, उसको तुम भी प्राप्त कर सकते। इसलिए
यदा ते मोह करिणम बुद्धिर्वति तरस्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसलिए तुम्हारी जब बुद्धि जो है मोह रूपी घन को पार कर जाएगी तो तुम्हारे तुम अन्य मनस्क हो जाओगे और अपने कार्य के प्रति अपनी ड्यूटी के प्रति जो है ध्यान दोगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी क्योंकि वो वेदों में जो सकाम कर्म के बारे में बताया गया उससे तुम आगे निकल आओगे और तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी, समाधि को प्राप्त करोगे। इस तरीके से यहां पे हमारा एक तीसरा जो है पार्ट खत्म होता है, अभी लेसन चार शुरू होता है। अर्जुन जब ये सारी चीजें सुनता है कि ऐसा व्यक्ति बन सकता हूं मैं, ऐसा कार्य करूंगा, तो अर्जुन के मन में एक डाउट आता है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में सुना, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है उससे विचलित नहीं हो रहा है, आत्म साक्षात्कार की समाधि में जा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, इस तरीके से वो दिव्य चेतना को प्राप्त कर रहा है। तो अर्जुन जो है जानना चाहता है कि ये व्यक्ति क्या वास्तव में होता है और ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, कैसे उसको हम पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन चार क्वेश्चन पूछता है भगवान कृष्ण से, जो कि 54 नंबर श्लोक में है। अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाच तप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किम प्रभासेता किम आसीत व्रजेत किम। भगवान ने जिस व्यक्ति के बारे में बात किया वो है स्थित प्रज्ञ, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ, यानी वो प्रज्ञ में स्थित है, प्रज्ञा में स्थित है। तो अर्जुन पूछता है उसके लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा उसके लक्षण क्या है, और स्थिति किम प्रभासेता वो बोलता कैसे है, और किम आसीता वो बैठता कैसे है, और व्रजेत किम वो चलता कैसे है। चार चीजें, उसकी भाषा क्या है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, और चलता कैसे है। तो अर्जुन ये भौतिक चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा है। जब अर्जुन पूछता है उसकी भाषा क्या है तो उसका उसका पूछने का अर्थ है कि उसके लक्षण क्या है, किन लक्षणों से जाना जाता है कि यह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। जब अर्जुन पूछता है वो बोलता कैसे है तो उसका मतलब यह है जब उसको स्नेह होता है मिलता है या घृणा मिलती है या कोई उसकी प्रशंसा करता है या कोई उसको दोष देता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तीसरा प्रश्न था वो बैठता कैसे है, यानी वो अपनी इंद्रियों को जब भोग वस्तुएं सामने उपस्थित होती हैं फिर भी वो उन इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, उनसे कैसे वो बच के रहता है। और चौथा, जब वो अपने इंद्रियों को किस तरीके से यूज करता है। ये चार प्रश्न अर्जुन ने पूछे, ये चारों प्रश्न हमको याद होने चाहिए। पहला, का भाषा यानी उसके लक्षण क्या है, किम प्रभासेता वो बोलता कैसे है यानी कि वो आंतरिक और बाहर रूप से क्या बोलता है जब उसके साथ ऐसा कुछ व्यवहार होता है, कभी उसको प्रेम मिलता है, कभी घृणा मिलती है, कभी उसकी प्रशंसा होती है, कभी कोई दोष देखता है। तीसरा, वो बैठता कैसे है मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, और व्रजेत किम यानी अपनी इंद्रियों को किस तरीके से वो यूज करता है। ये चार प्रश्न अर्जुन ने पूछे, भगवान कृष्ण ने इनके उत्तर अभी यहां से लेके 55 नंबर श्लोक से लेके इस अध्याय के अंत तक दिए हैं, हम लोग उसको चर्चा करेंगे। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामान्य लक्षण दूसरे अध्याय के 55 नंबर श्लोक में बताया। भगवान कहते हैं, पहला प्रश्न था कि उसके लक्षण क्या है, भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मन से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की जो भी भौतिक इच्छाएं होती हैं वो व्यक्ति उनको त्याग देता है और वो मन में शुद्ध हो जाता है और आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, हमारे हृदय में यानी कि मन में बहुत सारी इच्छाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं, ये खाऊं वो खाऊं, यहां जाऊं वहां जाऊं, उससे मिलूं, ये देखूं वो सुनूं, वो टेस्ट करूं वो टच करूं, इतनी सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती रहती हैं। वो कहां से उत्पन्न होती है, मन से उत्पन्न होती है। मन को इंद्रियों का राजा बोला जाता है। तो बोलते हैं कि जब वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, वो इंद्रिय तृप्ति में फंसता नहीं है और क्या होता है, अपने मन को शुद्ध करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करता है। वो कहीं बाहर सुख ढूंढने नहीं जाता, ये स्त्री मुझे सुख देगी, ये खाना मुझे सुख देगा, ये पिक्चर मुझे सुख देगी, ये दोस्त मुझे सुख देगा, बल्कि वो अपने आप में आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर लेता है।
आत्मा में संतोष प्राप्त करता है उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। यह पहला आंसर भगवान कृष्ण ने दिया। अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, तो भगवान बोलते हैं उसका लक्षण यह है कि इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को उसने त्याग दिया है। आत्म में संतुष्ट होने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम और उनके साथ हमारे संबंध के बारे में ज्ञान होना चाहिए। भगवान के जो गुण है वो विशेष रूप से भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं, हमारे कर्मों को कृष्ण से जोड़ने और कृष्ण को कर्मों का फल अर्पण करने का लाभ होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, ये जो 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 चीजें, जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भोग लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहते हैं, जो ग्रोसरी चाहिए रहती है, वो भी कहां से आ रही है? वो भगवान के द्वारा आ रही है। फिर जो भगवान हमने जो उनको पकाने का जो भी आइटम यूज किए, जो भी कढ़ाई बर्तन यूज किए, जो भी गैस यूज, वो भी सब भगवान से ही आ रहा है। और वो हमने बना के फिर से किसको अर्पण किया? भगवान को अर्पण कर दिया। तो तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरे ही है, ये भी तेरे ही है, ये शरीर भी तेरे ही है, और मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका जो फल मिलेगा वो भी मैं आपको अर्पण करता हूं। आप जानो क्या करना है, आप मेरे आप जानिए क्या करना है। तो जब कोई इस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान जो है उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और उस भक्त के जीवन में भगवान पर्सनली रुचि रखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भगवान भक्तों के जीवन में व्यक्तिगत रुचि रखते हैं। व्यक्तिगत रुचि रखने का मतलब क्या है? भगवान पर्सनली देखते हैं उसको क्या चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करते हैं। भगवान देखते हैं उसके पास क्या है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं पर्सनली, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, खुद भगवान करते हैं ऐसा। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को कृष्ण से जोड़ता है और कृष्ण को कर्मों का फल भी अर्पण कर देता है, वो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है और भगवान उसको फुल टेक केयर करते हैं। पूर्ण रूप से वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है और भगवान पूरा डिपेंडेंसी का जो है कार्य। अर्जुन का रथ हांक रहे हैं भगवान, आप छोड़िए बात सारी, भगवान अर्जुन के रथ को हांक रहे हैं क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित है। पर्सनली हांक रहे हैं, अपने किसी सेवक को नहीं रखे हैं, अपना कोई सारथी को नहीं, मेरे सारथी को लेके जाओ, नहीं, खुद हांक रहे हैं रथ को। यह है भगवान का भगवान के प्रति संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट होने की व्याख्या। ये रामानुजाचार्य के द्वारा रंग गद्यम लिखा गया है, वो थोड़ा अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है, हमने तो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो हमारी सारी गतिविधियां जो हैं वो कृष्ण की सेवा से जोड़ना चाहिए, उससे क्या होगा वो यहां पे लिखा हुआ है। शुद्ध भक्ति और निष्काम कर्मयोग में एक अंतर है कि शुद्ध भक्त के कार्य उसकी भक्ति से ही प्रारंभ होते हैं, निष्काम कर्मयोग में कर्म जो है वो मेन होता है। निष्काम कर्मयोग में कर्म सामान्यतः भौतिक आसक्ति से प्रेरित होते हैं, लेकिन कर्म भले ही भौतिक आसक्ति से प्रेरित हैं, लेकिन उन कर्मों का जो फल है वो अगर भगवान को दे दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाते हैं कर्म। तीसरा, हमारी गतिविधियों को हम कृष्ण की सेवा से अगर जोड़ देते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके का अभिनय करने से, नाटक करने मात्र से क्या होता है, व्यक्ति कर्म और फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं इससे भी बढ़कर उसको मुक्ति प्राप्त होती है, और इससे भी बढ़कर क्या होता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं वो मेरे पास आ जाता है, माम उपैससी, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। आप देख रहे हैं पड़ोस वाले पिक्चर में जहां भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया और भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनको सांपों के बीच में डाल दिया जाता है सांप उनको काटते नहीं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनको हाथियों के नीचे पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया जाता है भगवान की रक्षा, हर जगह उनकी रक्षा करते हैं। और जब उसका बाप ही उसको मारने के लिए तुल जाता है तो भगवान खंभे से प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। पर्सनली भगवान व्यक्तिगत रुचि रखते हैं उस भक्त के लिए, ऐसा कोई देवता नहीं करता है। देवताओं की जो थिंकिंग है वो ये है, मैं तुमने मेरी पूजा किया ये ले फल और जा, भगवान पर्सनली रुचि रखते हैं। भक्तों के लिए कृष्ण की विशेष कृपा है। कोई कह सकता है कि अपने भक्त के प्रति कृष्ण का विशेष स्नेह उनके लगाव और घृणा का लक्षण है, लेकिन भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन भगवान भी तो एक व्यक्ति ही है, हाँ, तो स्वाभाविक रूप से वो अगर कोई उनके साथ, जैसे जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग भगवान के पास गए, दोनों ने भगवान से विनती किया कि उनको हेल्प करें। अर्जुन चाहता था कृष्ण मेरी तरफ आए और दुर्योधन चाहता था कृष्ण की सेना मेरी तरफ आए। तो जब भी भगवान ने ऑप्शन दिया, कृष्ण या तो एक तरफ कृष्ण रहेंगे, एक तरफ उनकी सेना रहेगी, क्या चाहिए? अर्जुन कहता नहीं मुझे तो आप चाहिए। तो अभी कोई भगवान को मांग रहा है तो भगवान उसके हो गए, फिर भगवान को उसने खरीद लिया। भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं। तो जैसे मान लीजिए बारिश होती तो बारिश सबके लिए बारिश है, लेकिन कोई छाता लगा के खड़ा हो जाता है तो फिर क्या करें, तो उसको बारिश का कैसे अनुभव हो पाएगा? तो वैसे ही भगवान स्वाभाविक रूप से उनके प्रति ज्यादा अनुकूल भाव रखते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भगवान बताते हैं कि कैसे उनके भक्त जिनका वो पक्ष लेते हैं आम लोगों की तुलना में अलग श्रेणी के होते हैं। ज्यादातर केस में जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको समाज में गिरा हुआ माना जाता है। भगवान क्या कहते हैं, अगर मेरे भक्त का पतन भी हो जाए तब भी उसको साधु मानना चाहिए। आप पहुंचेंगे जब भी नवे अध्याय में तो भगवान इस श्लोक को बोलते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा भक्त का पतन भी हो जाता है पाप करने के कारण तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव समन्तव्या, उसको साधु ही मानना चाहिए। हो सकता है कि भक्त कभी कभी गलतियां करके पाप कर्म करता है, लेकिन फिर भी वो कर क्या रहा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है और भक्ति में दृढ़ है, इसलिए उसको संत माना जाना चाहिए और जल्दी ही वो सुधर जाएगा। क्योंकि भक्ति योग जो है वो ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति इसमें सुधर जाएगा, कोई कितना ही नीच क्यों ना हो। तो कृष्ण की दया के कारण जो लोग जन्म से अयोग्य माने जाते हैं वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का एक नाम ही है पतित पावन, जो सबसे पतित लोग हैं उनको भी भगवान पावन करने वाले हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भगवान किस प्रकार से भक्तों के जीवन में रुचि लेते हैं। अब ये गजेंद्र के एग्जाम्पल में भगवान अपने दूत को भेज सकते थे, किसी को भेज सकते थे, जाओ वो ग्राह को मारना था और क्या करना था, लेकिन भगवान पर्सनली आए। कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में सत्य को समझते हुए कृष्ण भावना में स्वयं को लगा देना चाहिए। सबसे गोपनीय ज्ञान यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं, इसे समझना स्वाभाविक रूप से कृष्ण चेतना के मार्ग पर लेके जाता है। दूसरा प्रश्न था अर्जुन का कि वो बोलता कैसे है, यानी जब उसको कोई प्रेम देता है या उसके ऊपर कोई क्रोध करता है तो उसकी बुद्धि और शब्द में वो कैसे जवाब देता है। भगवान उसका आंसर दो श्लोकों में 56 नंबर और 57 नंबर श्लोकों में बताते हैं। भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगतिस्पृहा वीतराग भयक क्रोधः स्थिर धीर मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभि स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब उसको त्रय ताप मिलते हैं फिर भी उसका मन विचलित नहीं होता, यानी उसको संकट मिलता है फिर भी वो विचलित नहीं होता, वो सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, जो आसक्ति से भय से और क्रोध से हमेशा मुक्त रहता है उसको क्या बोला जाता है, स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। और साथ साथ में जब शुभ मिलता है, सुख मिलता है या शुभ मिलता है तो उससे हर्षित नहीं होता, और जब उसको दुख मिलता है तो उससे घृणा भी नहीं करता, वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यानी अच्छे और बुरे लोगों से, अच्छे और बुरे रिजल्ट से वो अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में स्थित रहता है, वो जानता है ये क्षणिक है, वो ज्ञान में स्थित रहने के कारण वो उन सबको समान तरीके से टॉलरेट करता है। लक्षण क्या है उसका यहां पे थोड़ा बताया गया है। जैसे अमीर आदमी, रोगग्रस्त आदमी और बुद्धिमान आदमी को कुछ लक्षण होते हैं, ऐसे ही लक्षण यहां पे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है। हाँ मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको पता करना है कि इसमें बुद्धिमान कौन है, तो बोलने से पता चलेगा। जब तक वो बैठा रहेगा तब तो पता नहीं चलेगा कौन बुद्धिमान है, लेकिन जैसे बोलेगा तब पता चलेगा ये तो बुद्धिमान है नहीं, ये तो ये बुद्धिमान है, तब पता चलेगा। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो केवल कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में ही बोलता है, फालतू बातें वो नहीं करता है। अभी तीसरा प्रश्न है कि किस तरीके से वो अपनी इंद्रियों को संकुचित करता है। अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है। भगवान कहते हैं कि एक योगी भक्त या आत्म साक्षात्कार की जब परीक्षा होती है तो वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। यहां पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में एक भक्त है, उनका नाम है हरिदास ठाकुर, यंग है, और वो रोज भगवान का नाम जप किया करते थे। एक बार उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री आई और उसने बोला कि मैं आपसे संग करना चाहती हूं। हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं अपना नाम जप पहले पूरा कर लूं, उसके बाद जैसा आप बोले मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 लाख नाम रोज लिया करते थे। मतलब हम लोग जो माला जप करते हैं, हम लोग 16 माला करते हैं दिन में, वो 192 माला रोज किया करते थे। तो अभी वो बैठ गई, इंतजार करने लगी कि कब उनकी माला पूरी होगी। इस तरीके से पूरा दिन हो गया, पूरी रात वो माला ही करते रहे। तब तक वो सो गई, वो चली गई। फिर बाद में अगले दिन फिर से आई, हरिदास ठाकुर ने कहा वो तो कल की माला थी, आज मैं फिर से माला करने जा रहा हूं, फिर से मेरी माला कंप्लीट होगी। उसके बाद वो फिर से रुकी। 3-4 दिन ऐसा होने लगा और वो स्त्री ही बाद में भगवान की भक्त बन गई। जिस प्रकार से यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वसहा, आपने कछुए को देखा होगा, कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, जब जरूरत होती है तब निकालता है, जब जरूरत नहीं होती तो अंदर कर लेता है। ऐसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। जब वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, वो पाप नहीं करता, वो गलत कार्य नहीं करता, अपने आप को संकुचित कर लेता है। यह प्रश्न था अर्जुन का, वो बैठता कैसे है, यानी अपनी इंद्रियों को संयम कैसे करता है, उसका आंसर भगवान दे रहे हैं 58 नंबर श्लोक में। तो जो सुख दुख आते हैं उसको वो कृष्ण की कृपा समझ के स्वीकार कर लेता है। हमेशा वो साहसी रहता है, क्रियाशील रहता है, भगवान की सेवा में मग्न रहता है, वो राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। जब उसके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, वो चाह रहा था 95% आना लेकिन 94% आता, वो क्रुद्ध नहीं होता, अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमेशा दृढ़ संकल्पित रहता है किसी कार्य को कैसे और अच्छे तरीके से किया जाए, भक्ति को और अच्छे तरीके से कैसा किया जाए, वो दृढ़ संकल्पित रहता है, वो क्रुद्ध नहीं होता। लास्ट ये तीसरा प्रश्न, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई। तो तीसरे प्रश्न में जैसा कि वो कैसे बैठता है करके बात हुई थी, तो वो अपनी इंद्रियां सिर्फ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। जैसे कछुआ अपने को बाहर निकालता है और फिर अपने को संकुचित कर लेता है, तो ऐसे ही इंद्रियां तभी वो बाहर निकालता है, इंद्रियों का यूज तभी करता है जब भगवान की सेवा करनी होती है। जब भगवान की सेवा नहीं करनी तो अपनी इंद्रियों को संकुचित रखता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहर से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, 59 नंबर का श्लोक। भगवान बोलते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाता है, मान लीजिए कोई हो सकता है इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, अभी नहीं चाहिए उसको इंद्रिय भोग, लेकिन इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं उसके अंदर बनी रहती हैं, वो चाहता है कि करूं, भले ही वो बाहर से दिखाता है नहीं करना चाहता हूं लेकिन इच्छा बनी रहती है। तो जब उसको उत्तम रस का अनुभव होता है, रस वर्जम रसोप्यस्य, जब उसको 56 भोग का अनुभव हो जाता है तो दाल चावल को जैसे छोड़ देता है वैसे वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देता है। जब उसको उत्तम रस का अनुभव होता है जो इंद्रिय संयम करके प्राप्त हो सकता है, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाने देकर इंद्रिय संयमित करते हुए वो जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति करने में उसको उत्तम रस प्राप्त होता है। उसके सामने इस संसार में जो प्राप्त होने वाले सुख हैं वो कुछ भी नहीं है, उनको वो त्याग देता है। हम लोग खाने के लिए कहां कहां नहीं जाते हैं, हाँ, लेकिन वो क्या करता है, वो भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करता है और कुछ ग्रहण नहीं करता, उत्तम रस का आस्वादन करता है। देखिए इंद्रियों को निग्रह करना बड़ा मुश्किल है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक राजा था, उसके पास एक ब्राह्मण पहुंचा। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास एक बकरी है, इस बकरी को संतुष्ट करना है, यह बकरी संतुष्ट होनी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, बोला एक हफ्ते बाद मैं आऊंगा, यह बकरी पूर्ण रूप से संतुष्ट होनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। एक हफ्ते बाद वो ब्राह्मण वापस आया। उस दौरान राजा ने उस बकरी को खूब हरी हरी घास खाने को दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को दिया।
ये ब्राह्मण जब वापस आया तो उसने ब्राह्मण ने राजा से पूछा, क्या संतुष्ट हो गई? राजा ने कहा हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। तो ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी जेब से हरी घास निकाली और बकरी को दिखाई। जैसे बकरी ने हरी घास को देखा वो तुरंत दौड़ के आ गई, हरी घास को खाने लगी। उसने राजा से कहा ये तो संतुष्ट नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है आपको मैं एक हफ्ते का समय देता हूं, आप इसको संतुष्ट करके दिखाइए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने क्या किया, उसको हरी घास दिखाता था लेकिन जब वो खाने के लिए आती तो एक डंडा मारता था। तो इस तरीके से 7 दिनों तक उसने कुछ भी खाने को नहीं दिया बकरी को। 7 दिनों के बाद वो राजा के पास लेके आया और बोला अभी ये संतुष्ट है। तो राजा ने कहा इसको घास दिखाओ। तो जब उसने घास दिखाया ब्राह्मण ने तो बकरी सोचने लगी 7 दिन हो गए हैं, हर दिन इसने मुझे मारा है, आज भी मारेगा, मैं घास खाने नहीं जाऊंगी। तो ये हो सकता है कोई बहुत मुश्किल से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करे बिना दूसरी जगह लगाए। यानी बकरी को कुछ और खाने को नहीं दिया गया, घास भी नहीं दी गई और कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, लेकिन जब मौका मिलेगा तो बकरी घास खाने लगेगी और छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसको दूसरी जगह टेस्ट नहीं मिला है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान की भक्ति में टेस्ट मिल जाता है, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति को त्याग देते हैं। लेकिन जो अष्टांग योगी होते हैं, जो ऊपर दिया गया है मायावादी और अष्टांग योगी, इन लोगों का पतन हो जाता है, क्योंकि इनको टेस्ट बना रहता है। जैसे कोई मान लीजिए रोगी है, कोई बीमार है, तो भले ही उसको बोल दिया जाए भाई तुमको चावल नहीं खाना है, तुमको स्वीट नहीं खाना है, कोई जैसे शुगर का मरीज है उसको बोलते तुमको स्वीट नहीं खाना, लेकिन उसकी इच्छा होती रहती खाने की, उसको रुचि रहती है और कभी कभी मौका मिलता तो खा भी लेता है। लेकिन जब उसको कुछ उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है, भाई तुम ये खाओ, ये भी उसके उससे भी बढ़कर है ये, तो जब वो उसको खाने लगता है तो फिर वो स्वीट को छोड़ देता है। इसलिए भगवान यहां पे कहते हैं कि उन लोगों का पतन हो सकता है, लेकिन जिसको उत्तम रस में रुचि उत्पन्न हो जाती है उसको इंद्रिय संयम करना बड़ा आसान हो जाता है और विषय वस्तु की रुचि भी चली जाती है। प्याज लहसुन खाना, अंडा मांस मछली खाना, इन सब में उसकी रुचि चली जाती है और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के प्रसाद को ही वो ग्रहण करता है। इंद्रियां इतनी कठोर हैं कि वो क्या करती हैं, विवेकी पुरुष जो होता है उसको भी विचलित कर देती हैं। विश्वामित्र मुनि उन्होंने 70,000 साल तक तपस्या किया, 70,000 साल तक, और इंद्र ने क्या किया, एक वहां पे अप्सरा को भेज दिया और वो बेचारे तपस्या में थे लेकिन उनके कानों में आवाज आने लगी उसकी पायल और घुंघरू की, हाँ उसके कारण उनका जो है वो तपस्या 70,000 साल की तपस्या बेकार हो गई। तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो विवेकी पुरुष को भी विचलित कर देती हैं। किस तरीके से, जैसे उसको भी विचलित कर देती हैं जो उनको वश में करने का प्रयास करता है। 60 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, 61 नंबर श्लोक में लिखा है, लेकिन जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में करता हुआ इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में लगा देता है वो मनुष्य जो है स्थिर बुद्धि कहलाता है। अभी हम आपको भगवान के बताए हुए 2 श्लोकों के बारे में बताएंगे, 62 नंबर और 63 नंबर, किस तरीके से व्यक्ति का पतन होता है, स्थित प्रज्ञ द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण किस तरीके से होता है। भगवान ये चौथा उसका आंसर देंगे अर्जुन के प्रश्न का। इंद्रियों का नियंत्रण जो है केवल कृष्ण की भक्ति से संभव है। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परः वसे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यानी जो इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित रखता है और अपनी चेतना को मुझ में लगा देता है वही व्यक्ति जो है स्थिर बुद्धि कहलाता है। योग पूर्णता का उच्चतम स्तर क्या है, कृष्ण भावना। यानी सबसे बड़ा योगी कौन है, जो भक्ति योगी है। और भगवान बोलते हैं मत परहा, यानी सभी इंद्रियां और मन जो है वो कृष्ण के साथ जुड़े होने चाहिए। विष्णु के प्रति भक्ति की तुलना अग्नि से की गई है, जिस तरह आग जो है हर चीज को जला देती है वैसे ही एक जो भक्ति योगी होता है उसके सारी अशुद्धियों को भगवान जला देते हैं। इसलिए वास्तविक योग का अर्थ क्या है, भगवान की भक्ति और विष्णु पर ध्यान। कोई लोग बोलते हैं शून्य का ध्यान करो, वो योग नहीं है। वास्तविक योग क्या है, विष्णु की भक्ति। स्थित प्रज्ञ द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण, किस तरीके से वो नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 62 और 63 नंबर के श्लोक में बताया गया कि उसका पतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये देखिए फोटो, इस फोटो से समझने का प्रयास कीजिए कैसे फॉल डाउन होता है किसी व्यक्ति का, पतन कैसे होता है। अगर मन जो है कृष्ण पर नहीं लगा हुआ है तो इंद्रिय वस्तुओं पर लगा होता है, और इंद्रिय वस्तुओं पर लगे रहने के कारण वो व्यक्ति को किस प्रकार से भ्रमित करता है यहां पर। सबसे पहले ध्यायतो विषयान् पुंसः, सबसे पहले व्यक्ति जो है विषयों का ध्यान करता है, उसके कारण क्या होता है, संगस्ते सुपजायते, उसका संग प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है, यानी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसमें आसक्ति उत्पन्न करने के कारण तीसरा वाला कामना उत्पन्न हो जाती है, और अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, संगत संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, चौथे पिक्चर में देखिए क्रोध, और जब क्रोध होता है तो क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोह मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति डिल्यूजन में चला जाता है, उसको कुछ भी मोहित हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, उसकी जो मेमोरी है, जो उसकी याददाश्त है वो पूरी खत्म हो जाती है, स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति जो है मोहित हो जाती है। फिर क्या होता है, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो, जब किसी की स्मृति खत्म हो जाती है तो उसकी बुद्धि जो है निर्णय लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, बुद्धि का विनाश हो जाता है, और अगर किसी की बुद्धि खत्म हो गई तो क्या होता है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, मनुष्य जो है इस भव कूप में गिर पड़ता है। ये जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है भगवान की भक्ति करने के मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, लेकिन अगर वो इस तरीके से पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है तो क्या होता है, उसको पुनः इस भवकूप में गिर जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी यठरे सहनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार माता के गर्भ में सहन करना पड़ता है। इसलिए चूंकि इंद्रियां जो हैं वो स्वाभाविक रूप से सक्रिय हैं, आप मान लीजिए आंख बंद करके भी बैठे रहेंगे ना तब भी आप कुछ सोचते रहेंगे, इंद्रियां सक्रिय हैं, हमेशा एक्टिव अवस्था में रहती हैं, इसलिए उनको हमेशा क्या करना चाहिए, इंगेज रखना चाहिए, या तो वो भगवान की सेवा में इंगेज होंगी या फिर भौतिक सेवाओं में इंगेज हो जाएंगी, इसलिए उनको भगवान की सेवा में इंगेज रखना चाहिए। इसलिए इंद्रिय नियंत्रण के संदर्भ में सफलता का रहस्य क्या है, अगर उत्तम रस प्राप्त होता है, हायर टेस्ट मिलता है, तो जितने भी लोअर टेस्ट हैं व्यक्ति उनको भूल जाता है। तो यहां पे एक शब्द यूज किया गया है युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब वस्तुओं को अपने पास रखना लेकिन उनको अपना ना समझ के भगवान का समझना, यानी भगवान की सेवा में सब चीजों का उपयोग करना। युक्त वैराग्य जो है वो सकारात्मक आनंद प्रदान करता है, जैसे अच्छा खाना खाने पीने का जो आनंद है और प्रसाद से जीवन का आनंद है, तो हम भगवान को बहुत अच्छे तरीके से भोग लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं और उस व्यंजनों को भगवान को भोग लगा के वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। युक्त वैराग्य के दर्शन की वजह से पतन का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इसमें भगवान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उसमें व्यक्ति का पतन होने का कोई संभावना नहीं रह जाती है। लेकिन जो दूसरा वैराग्य है शुष्क वैराग्य, यानी कि फल्गु वैराग्य, यानी कि झूठा वैराग्य, उसमें पतन होने का चांस रहता है। वो लोग दिखाते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छा खाना नहीं चाहिए, लेकिन जब मिलता है तो छोड़ते नहीं है। अभी अर्जुन का लास्ट प्रश्न 64 नंबर श्लोक से 71 नंबर श्लोक में भगवान आंसर देते हैं, वो चलता कैसे है, यानी कि इंद्रियों को एंगेज कैसे करता है। तो अभी तक भगवान ने बताया कि भोग पदार्थों को स्वीकार करने में क्या खतरा होता है और कैसे व्यक्ति अपने आप को बचाता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अब बता रहे हैं कि भोग पदार्थ को स्वीकार करने में दोष नहीं है, दोष कहां है, आसक्ति में दोष है, इंद्रियों में दोष, जब तक इंद्रियां जो है कंट्रोल में नहीं है। अभी यहां पे भगवान बताते हैं इंद्रियों को वो संयम से और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो सभी आसक्ति से मुक्त रहता है, अटैचमेंट से दूर रहता है, द्वंद्व से मुक्त रहता है, दुख सुख लाभ हानि इन सबसे दूर रहता है, और अपनी स्वतंत्रता के चार नियमों के माध्यम से नियंत्रित करता है। चार नियम क्या है, मांस नहीं खाना,
जुआ नहीं खेलना, दारू इत्यादि नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, ये चार नियम है। इस प्रकार वो भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है। 2.64 में भगवान बताते हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसको प्रसाद मिलता है, यानी कि भगवान की कृपा को प्राप्त करता है वो। उसे क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानां महानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में जो तुष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, अधि भौतिक, अधि दैविक और अधि आत्मिक ताप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि जो है शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धियुक्त से न चायुक्त से भावना न चा भाव यथाशांतिर अशांत से कुतः सुखम। जो भगवान से संबंधित नहीं है उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, उसका मन स्थिर नहीं होता, और जब बुद्धि दिव्य नहीं है, जब मन स्थिर नहीं है तो शांति कहाँ से प्राप्त होगी, और जब व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं किया तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा, सुख का कोई चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो उसको भौतिक गतिविधियों से कोई लगाव नहीं होता, वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहता। वो अगर कृष्ण चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर कृष्ण नहीं चाहते हैं भले ही उसकी इच्छा है पर वो नहीं करता है। तो जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसी चेतना जो है प्राप्त होती है। 65 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि शांति के बिना सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कोई कहता है कि कृष्ण भावना में असंतोष भी होता होगा क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना से मन जो है शांत होता है। अगर कोई भगवान के साथ नहीं जुड़ा है तो मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी और शांति नहीं मिलेगी, शांति के बिना आनंद प्राप्त नहीं होगा। 66 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमम्बसी। बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवान देते हैं, कहते हैं कि जैसे पानी में नाव तैरती है और वायु एकदम से बहने लगती है, प्रचंड वायु जिस तरीके से उसको दूर लेके चली जाती है नाव को, वैसे ही जो इंद्रियां हैं, मन जिस इंद्रिय पे भी लगा रहता है वो इंद्रियां जो हैं वो मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु तस्मात् दस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरत होके उसके कंट्रोल में है, समझ लेना चाहिए वही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। यानी वो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, कछुआ जब जरूरत होती तब निकालता है नहीं तो अंदर रखता है। तो इसलिए ये कब होगा संभव, जब वो व्यक्ति ये जान लेता है मैं भोगता नहीं हूं, आई एम नॉट द एंजॉयर, कृष्ण इज ओनली एंजॉयर, केवल कृष्ण ही एंजॉयर हैं, भोक्ता वही हैं, सुप्रीम स्वामी वही हैं और वही सुहृद सर्वभूतानाम हैं, सबका भला चाहने वाले भी कृष्ण ही हैं। इस भावना के साथ वो जो है समझ पाता है। 2.68 स्थिर बुद्धि के व्यक्ति को परिभाषित करता है कि इंद्रियां भोग पदार्थों में संतुष्टि के लिए हमेशा खोज करती हैं। जो भोग पदार्थ मिलता है इंद्रियां चाहती हैं कि उसको भोगने के लिए, लेकिन जिसकी इंद्रियां भोग वस्तुओं के आकर्षण से संयमित रहती हैं, यानी वो भोग के प्रति भागता नहीं है, वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। अभी भगवान बता रहे हैं कि वो कैसा होता है। दो तरीके के मनुष्य बताए गए। 69 नंबर श्लोक में बताते हैं, या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मन। कि जो सारे जीवों के लिए रात होती है, जो आत्म संयमी यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके जागने का समय होता है, और जो सब लोगों के जागने का समय होता है वो उसके रात्रि का समय होता है। इसका अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं उसमें ये व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञा है सोता रहता है, लेकिन भौतिकतावादी लोग जो होते हैं वो जगते रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और जब भगवान की भक्ति करने की बात होती है तो भौतिकतावादी लोग सोते रहते हैं और ये व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करता रहता है। यानी ये आत्म साक्षात्कार के प्रति जो है आगे बढ़ता रहता है, लेकिन बाकी लोग जो है वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोते रहते हैं। इसलिए इसमें दिन रात का अंतर है। ओके,
आपूरिमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे ससांति माप्नोति न काम कामी। 57 नंबर का श्लोक। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा रहता हो। समुद्र में कई सारी नदियां आती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता। वैसे ही एक मनुष्य के अंदर ये इच्छाएं जो है इंद्रिय तृप्ति की कंटिन्यू आती रहती हैं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो उनसे विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। तो अभी 71 नंबर श्लोक और 72, दो श्लोक हैं आज के अध्याय में, दूसरे अध्याय के लास्ट चल रहा है। भक्ति योग की गतिविधियां झूठे अहंकार और स्वामित्व की भावना से मुक्त होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। वास्तविक इच्छाहीनता क्या है? हम कहते हैं कि इच्छाहीन बन जाओ, तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अपने लिए इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए खूब सारी इच्छाएं होनी चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित बनने की इच्छा ही वास्तविक इच्छाहीनता है। स्वामित्व से मुक्ति होना, झूठे अहंकार से मुक्त होना और यह जानना कि कृष्ण जो है सभी चीजों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना, यही जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। तो भगवान जो है 72 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्था नैनाम प्राप्य मुमि हति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण रक्षति। ये जो रास्ता मैंने तुमको बताया है अर्जुन, यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का रास्ता है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंत समय में भी इस तरीके से हो जाए, स्थित हो जाए, तो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उनका पतन हो जाता है। हमने जाना किस तरीके से पतन होता है। ध्यायतो विषयान कुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात बहुत सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। और उसके बाद भगवान ने बताया कि किस तरीके से वो जीव जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो भले ही उसके अंदर इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो उस समुद्र की भांति हमेशा बिना विचलित हुए रहता है, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छा रूपी नदियां हमेशा प्रवेश करती रहती। तो दृष्टांत भी यहां पे दिया गया कि भले ही कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर देता है या फिर योग करना शुरू कर, लेकिन उसके अंदर स्वाद तो रहता है ना। जैसे कोई रोगी है, रोगी भले ही उसको मना कर दिया गया, एग्जांपल दिया शुगर का रोगी है और उसको स्वीट खाने से मना कर दिया, लेकिन उसको स्वीट की इच्छा होती रहती है, तो भले ही जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो स्वीट खा लेता है। लेकिन जो स्थित व्यक्ति होता है वो अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि वो उच्च रस को प्राप्त करता है और उच्च रस को प्राप्त करने के कारण निम्न रस अपने आप से उससे जो है दूर हो जाता है और वो उससे बच जाता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे हम एंड करेंगे और अभी अगले सोमवार को हम लोग जो है थर्ड चैप्टर और सुनेंगे। थर्ड और फोर्थ चैप्टर हम लोग अगले वीक में कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।